તારીખ 5/4/1991 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 39.
સામાન્યપણે એક સમય કી પર્યાય છે સામાન્યપણે એક સમય કી પર્યાય છે ત્રિકાલી વસ્તુ અનંત ગુણ મહાન હૈ એસા સમજ મેં આતા હૈ તો ભી જો એક સમય કી પર્યાય ત્રિકાલી કો એક સમય મેં ગ્રાસીભૂત કરતી હૈ ઉસકી અદ્ભુતતા કે આશ્ચર્યકારી નહીં कहा बाहरे पर्याय तेरा भी सामर्थ्य अचिंत्य है अगम निगम का तेरा खेल जोने वाले को भी स्तंभित कर देते कर दे ऐसा है। मैंने फिर अब किसको मान करे जो एक समय में त्रिकाली को ग्रासीभूत करे उसके सामर्थ्य कोई कम है क्या? सामान्य रूप से तो त्रिकाली महान है लेकिन विशेष रूप से इनकी भी महानता कोई कम नहीं है। इसमें भी खास करके दृष्टि का काम बहुत गजब का है। तो प्रारंभ से ही प्रथम क्षण में ही सारी वस्तु को ग्रासीभूत कर लेती है, कब्जा कर लेती है। उनका काम इतना महान है, कोई अचिंत्य विषय है कोई पंचाध्याय में तो बोल दिया कि सम्यक तो कोई वस्तु ऐसी है वाचा में गोचर किसकी वाणी में नहीं आ सकता, तीर्थंकर की वाणी में भी नहीं आ सकती। इसलिए वक्तुं च श्रोतुं च न अधिकारी विधिक्रमात्, कोई अधिकारी नहीं है, न कोई कहने का अधिकारी है, न कोई सुनने का भी अधिकारी है। ऐसा करके
पर्याय को इतना मतलब
ऐसे भी मानता है इस भाषा का कोई इसमें काम नहीं है। एक समय में त्रिकाली को जैसे कोई कवर कर ले ना ऐसा कर लेते हैं
त्रिकाली सामर्थ को एक समय में
त्रिकाली का कितना भी सामर्थ है बेहद फिर भी उसको भी एक समय में जो पी जाता है तो इसका भी कोई सामर्थ है। त्रिकाली को ग्रहण करने में तीन काल नहीं लगता, एक ही समय लगता है, कोई कम सामान है क्या? ऐसी बात है।
तीन लोग ना थे ना जिनके वश हुए, तीन लोग थे ना जिनके वश हुए,
फिर भी जिसकी उन्मत्तता नहीं है फिर भी जो उन्मत्त नहीं हुए, जो गर्वित नहीं हुए, अभिमानी नहीं हुए और तीन काल के अनंत सामर्थ्यवंत वस्तु को जिसने पचा लिया, अजम कर गए वो ऐसी बात है, उसको भी अजम करके बैठ
गया। अजम करके बैठी है ऐसी पर्याय के स्वामी ऐसे सत्पुरुष
कौन, इसकी महिमा भी कौन कर सकता है जब ये पर्याय की महिमा नहीं कर सकते तो इसकी भी महिमा कौन कर सकता है।
परमात्म स्थान में तो एक बोल है कि ऐसी पर्याय ही पूज्य पर्याय है, ऐसी पर्याय को पूज्यता का दर्जा दिए परमात्म स्थान में।
सवाल
बहुत अच्छा है, उसमें कुछ बोलने बहुत बढ़िया था।
धर्मात्मा बालक हो, वृद्ध हो, देड़ को हो, मेंढक पर हूँ नानानंद छो, रागमा हूँ नहीं, एम भान होवाथी जयरे अनुभव करे छे त्यारे अंशे सिद्ध समान आत्मा नो अनुभव करे छे। सिद्धना जेटलो पूर्ण अनुभव नहीं, અનુભવ માણસ છે, વિષય અંશમાં વિષય માણસ નથી। સિદ્ધના જેટલો પૂર્ણ અનુભવ નથી પણ સિદ્ધની જાતનો અનુભવ છે। પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે આત્મતત્વને અનુભવે છે। એક દેશ આનંદકંદનો અનુભવ થયો એટલે સ્વરૂપ અનુભવની સર્વ જાતિ પીછાણી છે। સિદ્ધ અરહંત વગેરેને આવો અનુભવ હોય છે તેમ જાણી લઈએ છીએ। અનુભવ પૂજ્ય છે, અનુભવ પૂજ્ય છે, પોતે શુદ્ધ આનંદકંદ છે એવી શ્રદ્ધા સહિત અનુભવ પૂજ્ય છે। તે જ પરમ છે, તે જ ધર્મ છે, એ જગતનો સાર છે। આત્માના અનુભવ, આત્માનો અનુભવ ભવનો ઉદ્ધાર કરે છે, અનુભવ ભવનો પાર કરે છે, મહિમાને ધારણ કરે છે, દોષનો નાશ કરે છે। આત્માની શક્તિમાં જ્ઞાન અને આનંદ ભર્યા છે। શક્તિની વ્યક્તિરૂપી અનુભવથી ચિદાનંદનો સુધાર થાય છે, તે જ સુધાર છે।
उच्चार कर रहे
हैं। डायरीमा त घुम्ने चेष्टा होइन, बोली घुम पावरफुल अभिव्यक्ति बहुत सुन्दर
पर्यायी पर्याय दृष्टि मूल दृष्टि लिखा है, पर्याय में इतनी ताकत है, पर्याय में इतना जोर है और फिर भी पर्याय दृष्टि में मूल दृष्टि लिखा
है, फिर पर्याय को
मूल दृष्टि लिखा है। पर्याय पर्याय दृष्टिवन को पर्याय मूड कहा गया है।
हाँ वो तो क्या है कि वो विकारी पर्याय को व्यवहारिक पर्याय को ही पूरा अपना स्वरूप मान ग्रहण कर लेता है। यही हालत है उसमें तो, वो पर्याय मंडा पर समय आ कहा उसमें तो है कि जो राग है एक समय का उसमें पूरा आत्मा स्वीकार कर लिया अपना स्वरूप का।
महत्तर तब है जब उसका अवलंबन नहीं लिया जाता।
अब तो ये तो है त्रिकाली को जो विषय करते इस पर्याय तो मिथ्या दृष्टि के पर्याय की महिमा
इसमें तो प्रश्न हुआ है कि अंतर में त्रिकाली ध्रुव का महात्मा चाहिए कि ध्रुव को पकड़ने वाली पर्याय का, ऐसा एक प्रश्नोत्तर कर दिया है। तो तब यह अंदर त्रिकाली ध्रुव का तो उनका प्रश्न फिर प्रश्न खड़ा हुआ है कि त्रिकाली ध्रुव तो अभव को सबको ही है अभी तक त्रिकाली ध्रुव, लेकिन उसने जिस पर्याय ने पकड़ा उस पर्याय की भी कोई महत्वता है। तो उन्होंने उत्तर खंड में दिया वहाँ पर कि अपन ध्रुव भाव अभव कुछ भी नहीं है, इसको हम सब समाप्त कर दिया बात को। मेरे प्रश्नकाल का प्रश्न ये था कि जो त्रिकाली को पकड़ने वाली पर्याय है उस पर्याय की भी कोई महत्वता है, उसका उन्होंने नकार किया। फिर नकार करने के बाद उन्होंने भाव अभाव के दोनों को त्रिकाली है तो इतना उत्तर दिया कि हम भाव अभाव भी कुछ नहीं ऐसा करते हो।
वो तो क्या है
इसमें क्या कहना चाहते हैं
कि व्यू पॉइंट तो ये बात है कि त्रिकाली तो अभवी को भी है
हाँ,
लेकिन वो तो ज्ञानी कहते हैं, अभवी थोड़ा कहता है, अभवी को तो उसका स्वीकार ही नहीं है इसलिए वो अभवी है, वो तो ज्ञानी ने ऐसा कहा।
ध्रुव को पकड़ने वाली पर्याय का तो
लेकिन उनका तो उत्तर देने का ढंग वही था कि जो वो अपन जो खुद अनुभव करते थे वो कह देते थे, वो शास्त्र पद्धति से उत्तर नहीं देते थे। ये बात एक दफे चर्चा में उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था, हाँ खुद नहीं दिया था कि ऐसा है कि शास्त्र पद्धति से मैं उत्तर नहीं देता इसलिए कि मुझे कोई शास्त्र की अपेक्षा ध्यान में नहीं है कि आचार्यों ने कब क्या कहा, क्या क्या बात कही है, कैसे कही है, किस अपेक्षा से कही है, तो उस मर्यादा तो मेरे ध्यान में तो रहती नहीं। आप लोगों तो कोई शास्त्र की अपेक्षा प्रतीक्षा को या आचार्यों के कथनों को ध्यान में रखकर लक्ष्य में रखकर प्रश्न पूछते हैं, बताते तो नहीं पूछने वाले कि हमने ये कुंदकुंद आचार्य इधर ऐसा कहते हैं तो ये बात हमको ऐसी लगती है या तुमको कैसे लगती है, ये बात तो ऐसे कोई खोल करके तो प्रश्न नहीं करते हैं, कुछ बात तो मन में रख लेते हैं फिर प्रश्न उठा देते हैं, पर ऐसा उसमें कुतूहल रहता है कि क्या जवाब मिलता है, देखें तो सही आचार्य ने तो ऐसा कहा है लेकिन वो क्या कहते हैं, ऐसा भी कुतूहल ऐसे भी कुतूहल रख करते प्रश्न चलते थे। तो फिर जब वो जवाब देते थे तो फिर सामने वाला प्रश्न करने वाला ये बोलता था उस वक्त कि आपने ऐसा कहा लेकिन शास्त्र में ये बात इस शास्त्र में ये बात इस तरह चली है पर वहाँ तो इस तरह उत्तर दिया है तो फिर उसका क्या स्पष्टीकरण है, तो उन्होंने अपने पर से स्पष्टीकरण दे दिया कि देखिए मुझे कोई शास्त्र की ऐसी अपेक्षा विचार में नहीं है, मेरे तो भीतर में जो चलता है उसी को मैं बोल देता हूँ।
इसका तो स्पेशल दिया था उन्होंने इसमें,
हाँ,
तो ज्ञानी की बात को शास्त्र से नहीं मिलाना, नहीं शास्त्र से ज्ञानी को नहीं मिलाना, मतलब ये कि वो ज्ञानी जो कहते हैं उनकी बात शास्त्र में मिलाने के लिए ऐसा करके वो लिखा है उन्होंने।
शास्त्र की बात से अपना अभिप्राय को नहीं बनाना, लेकिन अपना अभिप्राय से शास्त्र की बात को समझ लेना, मिलान करके ऐसी बात किया है, वो थोड़ा दूसरी बात है। ये बात में उन्होंने ये बात कहने का अभिप्राय था, जैसे अपन जो जो बात चली उन्होंने भव्य अभिव्य बात का उत्तर ही नहीं दिया,
नहीं दिया।
तो उन्होंने तो बोला कि हमको क्या लगता है, क्या हमको तो लगता है कि न हम भवी है न अभवी है, हम तो जो है सो है, तो इस चर्चा में हम क्यों पढ़े भवी अभवी वाले की, हम क्या है, हमको क्या लगता है, ऐसा आपको लगना चाहिए, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा।
तो जिसने प्रश्न किया उसका प्रश्न तो भवी उसको उत्तर तो नहीं मिला, उसको उत्तर नहीं आया, उसका कहने का मतलब जो त्रेताली को पकड़ती है वो पर्याय, उस पर्याय का भी कोई महत्व है कि नहीं, खाली उसका प्रश्न इतना था।
अपने अपने स्थान में दोनों का महत्व है, वास्तव में ये बात है कि अपने अपने स्थान में तो दोनों का महत्व है, फिर भी सामर्थ्य की अपेक्षा देखा जाए तो त्रिकाली का जो सामर्थ्य है उसके आगे एक समय के पर्याय का क्या सामर्थ्य गिने, फिर भी एक दूसरा इसका पहलू है कि जो त्रिकाली का इतना सामर्थ्य है कि जिसकी कोई हद नहीं, सीमा नहीं है, ऐसे ऐसे सामर्थ्य को भी सम्यक दर्शन के पर्याय ग्रासीभूत कर लेती है, उसका भी कोई सामर्थ्य कितना गिने हम, जो एक समय में उतना काम करे उसका सामर्थ्य कितना गिने, एक दूसरा पहलू है मतलब इस विषय की महत्ता को समझने के लिए। प्रवचन साहब 172 गाथा का 20 नंबर का बोर्ड पर प्रवचन चल रहा था गुरुदेव का, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि वेदन की अपेक्षा जो धर्म की पर्याय उसका महत्व है, वेदन की अपेक्षा उसको गौण नहीं कर सकते, त्रिकाली में वेदन नहीं है और त्रिकाली की महत्ता जो है वो लक्ष्य करने के हिसाब से है, वेदन के हिसाब से नहीं है। ये बात परमागम सार में दो जगह आई है, एक 514 में और एक 541 में, उसमें तो खुद ने दो गाथा के विषय को आपके सामने रखा है कि पहले 11 गाथा की चर्चा की, समय सार की गाथा 11 में पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कह दिया था, वहां तो पर्याय का आश्रय छोड़ाने का अभिप्राय था, प्रयोजन था, और पर्याय को गौण करके उसी अभिप्राय से उसी प्रयोजन से अभूतार्थ कहा था, परंतु पर्याय सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं, यह भूतार्थ का सिद्धार्थ होता है कि उसकी विद्यमानता नहीं है, लेकिन कहा त्रिकाली में, अपने में इसकी विद्यमानता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो तो सर्वथा विद्यमान है, ऐसी बात नहीं है, अपने में तो वो विद्यमान है। वहीं गाथा 15 में अब उसके सामने रखी बात, तो जिसमें अबद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है वह पर्याय मुखी ही है, क्योंकि ये तो विधि की गाथा है 15 वाली, तो सामान्य का आविर्भाव करने की बात है, और सामान्य में आविर्भाव करने से प्रकट अनुभव गोचर होता है, वो बात एजेंडा पर है। वह पर्याय जैन शासन है, जिसमें अनुभव होता है वही समस्त जैन शासन है, जिन शासन सर्वम मारू जो द्रव, मेरा जो द्रव अविकार, विकार बिना का वितरागी तत्व है, इसका मैं लक्ष्य करता हूँ तब पर्याय में वितरागता आती है। यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है, ऐसा कहा, यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है, द्रव में वेदन नहीं आता। इस पर तो ये चौंके थे चंदू भाई अपने शिविर में, द्रव में वेदन नहीं, अरे द्रव में वेदन नहीं होता, नहीं होता, द्रव में वेदन नहीं आता, पर्याय वेदन में आती है, वो वेदन की पर्याय मुझे मुख्य है।
तो वेदन को स्वीकार कौन करता है, जानता कौन है जो पर्याय का वेदन को द्रव में वेदन नहीं आता, तो उस वेदन को स्वीकारता कौन देता है, वेदन हुआ
ज्ञान,
तो ज्ञान है वो नहीं है जो
जो वेदन, वेदन ही वेदन को स्वीकारता है,
वेदन ही वेदन को स्वीकारता है,
कौन स्वीकार है, पर्याय के बिना स्वीकार है, स्वीकार करने का अधिकार तो पर्याय का है।
तो पर्याय के दो विभाग हो जाते हैं, एक वेदन करने वाली पर्याय और भेजने वाली की पर्याय,
नहीं एक ही है, जो करता है वही कर्म है, वही क्रिया है,
तो उसमें
वही उपादान संप्रदान और वही आधार है, सौ कारकों एक में ही है।
द्रव्य तो नास्ती होगी, द्रव्य तो नास्ती होगी,
द्रव्य की पर्याय में नास्ति तो है ही पर्याय में कहा द्रव्य है, न द्रव्य में पर्याय है न पर्याय में द्रव्य है, वो तो आपस में तो एक दूसरे के सामान्य विशेष नहीं, विशेष में सामान्य नहीं,
इसका मतलब पर्याय निरंतर वाली और पर्याय भेदने वाली एक ही में,
एक ही वही वेदन करती है और वही वेदन में आती है, कर्म का अनन्य पड़ा है,
स्वभाव तो अवेदक,
हाँ स्वभाव तो अवैधक स्वभाव है, तरुण दृष्टि प्रकाश पत्र में अप्रसिद्ध अवैधक स्वभाव दोनों शब्द लिया है, अप्रसिद्ध अवैधक, इससे भी ज्यादा अभी तो सोनगढ़ वाले को तो सुनने में या तकलीफ हो जाए, ऐसी बात वो बोलते थे कभी, हम तो बताई नहीं कहीं बातें, तो हमने तो उन्होंने तो यही कहा था एक दफे चर्चा के दौरान कि द्रव है सो अंधा है अंधा, अब क्या कहेंगे जिस द्रव्य के हम गीत गाते हैं उसको क्या बताया, अंधा, अंधा को अंधा कहे तो बुरा लग जा रहा है,
हमारी दृष्टि में सर ये बात ही है, पर्याय वेदन कराती है और द्रव्य वेदन देता है, ऐसी दृष्टि में बात ही है,
द्रव्य में वेदन है ही, द्रव तो सामर्थ्य रूप है, द्रव वेदन, द्रव को न कुछ देना है न कुछ लेना है, द्रव अक्रिय चिद बिंब है, निष्क्रिय तत्व है, क्रिया कोई नहीं करता है, किसी भी प्रकार की एक भी प्रकार की क्रिया का जिसको संबंध नहीं, क्रिया रहित, क्रिया से शून्य और क्रिया के अभाव स्वरूप है,
सिद्ध भगवंत है तो पर्याय पर्याय के वेतन दे रही
है,
सिद्ध भगवंत है तो पर्याय पर्याय के वेतन दे रही, तो
चाहे निगोद की पर्याय हो चाहे सिद्ध की, पर्याय पर्याय का वेदन करती है, वेदन की सीमा पर्याय से आगे नहीं है, वेदन की जो सीमा है वो पर्याय में समाप्त होती है, पर्याय समाप्त होती है, विदन समाप्त हुआ।
सर्वगुणान सम्यक तो पर्याय में सर्वगुणांश हो गए,
पर्याय तो पर्याय की बात है। सर्वगुण सम्यक तो मैंने सम्यक तो के साथ सर्वगुणों के अंश पर्याय में प्रकट होते हैं, वो तो पर्याय की बात है। द्रव्य वेदन में नहीं आता, पर्याय वेदन में आती है। वो वेदन की पर्याय मुझे मुख्य है, उसको तुम गौण कर डाले वो नहीं चाले, वो चले नहीं नाथ, ऐसा करके भगवान करके पुकारा है। पूर्णानंद का नाथ जिसको जानने में और अनुभव में आया, जिसके जानने और अनुभव में पूर्णानंद का नाथ आया, वो जानने वाले को तुम गौण कैसे कर सकते हो, अनुभव करने वाले को गौण कैसे कर सकते हो, वो गौण नहीं होता है। वो तो द्रव्य तुझे द्रव्य का लक्ष्य और आश्रय कराने के वास्ते पर्याय को गौण कर दी थी, परंतु वेदन तो पर्याय में मुख्य है। भले द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण किया, परंतु वो परिणाम कहाँ चले जाए, ये परिणाम अस्थि रूप जो वेदन में आता है वो कहाँ जावे। ये तो आत्मा का पुकार है क्या, ये आत्मा का पुकार है कि वितराग स्वरूप जो मेरा द्रव्य है उसका लक्ष्य करने पर मुझे वितरागता वेदन में आती है, वो वेदन मुझे मुख्य है। और भीष्म के बोल में तो ऐसा कहा कि वही आत्मा है, द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी जो शुद्ध पर्याय वही आत्मा है, ऐसा बोला। तो वहां द्रव्य गौण है और पर्याय मुख्य है, ऐसी विवक्षा है कि द्रव्य गौण है और पर्याय मुख्य है वेदन की अपेक्षा से, क्योंकि द्रव्य तो वेदन ही नहीं है, तो इसकी मुख्यता वेदन के विषय में इसकी मुख्यता कैसे करेंगे। ये तो सब अगम निगम की बात है वास्तव। यही 514 में बात है, जो 544 में है वही 514 में सेम बात है। दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी है, ये बात ये वचन है पत्र में आया है। दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी है, एक सूत्र जैसी बात है, बहुत कम शब्द में कोई गंभीर विषय भर दिया है उसमें। उक्त वचनामृत जो दृष्टि के विषयभूत पदार्थ का यथार्थ निर्णय है, इसका महत्व दर्शाता है। दृष्टि के निर्णय में मैंने दृष्टि के विषयभूत जो पदार्थ है इसके निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी है, मैंने इसका निर्णय हुआ उसको पूर्ण शुद्धि इसके गर्भ में पड़ी है, आगे जाकर के वो व्यक्त हो जाएंगे, वो यथार्थ है। इस निर्णय स्वरूप संस्कार यह निर्णय स्वरूप संस्कार पड़ने के कारण होने से अब क्या है, इसमें जो रहस्य है वो क्या है कि जब ऐसा निर्णय होता है तो उस पर स्वरूप का संस्कार हो जाता है। आत्मा को समाधि होने के लिए स्वरूप में स्थित होने के लिए ये विषय है। 144 गाथा में पर मैंने का विषय चलाना। जब तक ये बीज ज्ञान उत्पन्न नहीं होता वहां तक अनादि का पर लक्ष्य नहीं मिटता, स्वरूप लक्ष्य यहाँ से चालू होता है, पर लक्ष्य नहीं मिटता। जी बात बीज ज्ञान की उत्पत्ति से स्वलक्ष चालू होता है या स्वलक्ष बंधन बन जाता है, तब से ही सर्व प्रवृत्ति स्वरूप लक्ष्य से होती है। उस पहले इसके पहले सभी प्रवृत्ति लक्ष्य वगैरह का तीर जैसी निरर्थक होती है। जैसे अंधेरे में कोई फायरिंग करता है, क्या मतलब है? अर्थात बहिर्दृष्टि होने वाली सभी प्रवृत्ति बाहर ही बाहर होने से, बाहर ही बाहर के परिणाम वाली होने से होती है, उसका आत्मलाभ कुछ नहीं होता। उस ये सब पूर्वानुपूर्व हुआ है। यहाँ से जो अंतर क्रिया हुई वही अपूर्वता को प्रकट करती है। यहाँ से अपूर्वता चालू हुई, इसके पहले अपूर्वता नहीं हुई। तो इस बात की महत्ता बहुत संक्षिप्त शब्द में उतनी दे दी है कि दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि पर ये जाओ, यहाँ तक आखिर की बात ले ली।
भावासन में पूर्ण शुद्धि पर
ये भावासन वाला विषय पत्र में इधर आया है, बाकी कहीं भावासन का विषय द्रव्यदृश्य प्रकाश में नहीं मिलेगा, इस जगह नहीं मिलता है। तो इतना जोर से मिला है कि इसके निर्णय में पूर्ण शुद्धि पड़ी है। नंबर मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा। और भी है तो 22 नंबर का पत्र है। मेरापणा, मेरा अस्थिपणा अथवा व्यापकपणा तो केवल त्रिकाली ज्ञान घन अखंड चैतन्य में है। इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ सहज स्वभाव है, पुरुषार्थ के लिए बहुत सुंदर है। स्वरूप की इस दृष्टि में पर्याय का पुरुषार्थ, ये पर्याय का सहज स्वभाव है। पुरुषार्थ करना फरना नहीं पड़ता, दृष्टि में ले लिया पदार्थ को स्वयं को, पुरुषार्थ तो सहज स्वभाव है इसका। पर्याय अपेक्षा पुरुषार्थ हुआ, पुरुषार्थ में वृद्धि हुई, उसने पुरुषार्थ किया, वृद्धि करी, ऐसा कहते हैं। विनय के विषय में वो क्या कहते हैं, 30 नंबर का पत्र है। वर्तमान ही परिपूर्ण हो, वर्तमान से ही देवादिक पर अथवा उनास्थित राग से किंचित मात्र लाभ का कारण नहीं, लाभ मानना ही अलाभ है। वेदन के अलावा अन्य कोई क्रिया जीव की नहीं। अब वेदन पर आते हैं। शरीर आश्रित अथवा अन्य पर आश्रित आकुलित वेदन को समकाले ज्ञान वेदन द्वारा गौण करते करते नाश करना मुमुक्षुओं का ध्येय है। यह ज्ञान वेदन अखंड त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव अस्तित्वमयी स्वपणे के अनुभव में सहज ही उदय होता है और ये ज्ञान वेदन राग से भिन्न करता निशंकित निराकुल सुख वेदन के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रकट होता है और वृद्धि पामता पामता अनंत सुख और ज्ञान का लाभ करता है। अप्रसिद्ध अवेदक यहाँ लिया है, अप्रसिद्ध अवेदक मुख्य अखंड स्वभाव में श्रद्धा के अस्तित्व रूप में प्रसरते ही प्रसिद्ध वेदन गौण होकर एक ही काल त्रिकाली व वर्तमान दोनों भावों का अनुभव होता है। यही वेद ज्ञान है। राग से पृथक ज्ञान का अनुभव ऐसे ही होता है, अन्यथा नहीं।
प्रसिद्ध वेदन
प्रसिद्ध वेदन नहीं, प्रसिद्ध वेदन मैंने ये शुद्ध पर्याय वो भी गौण हो जाता है। त्रिकाली की मुख्यता में प्रसिद्ध वेदन गौण हो जाता है। श्रद्धा के अस्तित्व रूप में प्रसरते ही प्रसिद्ध वेदन गौण होकर एक ही काल प्रसिद्ध वेदन गौण होता है, त्रिकाली की मुख्यता रहती है और दोनों का बिना मुख्य गौण अनुभव होता है, यही प्रमाण का विषय है। इसमें कोई मुख्य गौण नहीं।
ये तो सर ऐसा कहा जाता है कि जो वृत्त दृष्टि करने से निर्मलता होती है, है? तो स्थूल बात है कि वृत्त दृष्टि करने से पर्याय में निर्मलता आती है, तो द्रव्य जो है वो तो यहाँ प्रसिद्ध अभी तक हो गया, तो द्रव्य में तो जो पर्याय में निर्मलता उत्पन्न हुई और द्रव्य तो अलग ही है पर्याय से, और दृष्ट दृष्टि से पर्याय की निर्मलता हुई। और एक जगह ऐसा भी दिया है कि द्रव्य दीपता है तो द्रव्य आने वाले परिणाम उनको देखो तो तुम्हें द्रव्य पर ख्याल आ जाएगा, तो परिणाम जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका दाता कौन है, तो द्रव्य ख्याल में आ जाएगा।
किस आधार पर पर्याय खड़ी है?
हाँ
ऐसा भी है। किस आधार पर पर्याय खड़ी है? कोई आधार तो नहीं है, इसे द्रव्य ग्रहण होता है। मैंने द्रव्य को ग्रहण करने की जो चैनल है वो पर्याय है।
उसमें तो ऐसा घटाया गया है कि द्रव्य से पर्याय आती है।
द्रव्य से पर्याय आती है ऐसा है, वो प्रमाण का विषय भूत द्रव्य है।
द्रव्य दो भिन्न हो गए।
हाँ, द्रव्य शब्द का दो अर्थ है,
एक
प्रमाण का और एक दृष्टि के विषय भूत। तो जहाँ जो प्रकरण चलता है वहाँ वो लेना, एक में दूसरा ले लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी।
क्रॉस बात बहुत लगा थी।
हर ऐसे जितने भी शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं उसमें यही तकलीफ होती है कि यहाँ तो ऐसा कहते हैं और वहाँ ऐसा कहते हैं। गुरुदेव की चर्चा में यही प्रश्न चलता था राजकोट का, सब अध्ययन तो करते थे, वो शास्त्र में इधर का उधर विस्तर का, ऐसा उधर कहते उधर ऐसा कहते, ये बात कैसे है? तो वो समझ में नहीं आता है, तो क्लियर खुद नहीं होती तो बात समझ में नहीं आती, तो समाधान नहीं रहता।
जवाब देते
दृष्टिकोण तो समझ फिर तो थोड़ा होमवर्क करके ज्यादा आ गई है। एक दृष्टिकोण समझ लो मतलब, क्योंकि क्या हर बात हर जगह आपकी जोर बिड़ाई गई
थी, जो बात तब तो समय की आशा हो गई, तब जो बात समय रखी थी वो साफ हो
गया।
बढ़िया
दृष्टिकोण से त्रिविजन से क्या बात कही जाती है तो मुख्यमंत्री टाइम टेबल फिक्स हुआ था एक बार यहाँ दिया था दर्शन के लिए एक से पंद्रह तारीख भावनगर
नहीं
एक से पंद्रह तारीख आगरा दस तारीख आगरा दस तारीख से तीस तारीख भावनगर फिक्स किया था पाँच दिन आने जाने के
परिणाम से शून्य छः सौ पच्चीस नंबर में तीस मीटर बीस छः सौ पच्चीस
छः सौ पच्चीस में
परिणाम से शून्य हो ऐसा रुचिपूर्वक जोर आना चाहिए इसमें क्या कहना चाहते हैं
ऐसा
ऐसा रुचिपूर्वक जोर आना
चाहिए
इसमें क्या कहना है
त्रिका जी की रुचि ऐसी रुचि अनुयायी मेरी ऐसी रुचि हो गए परिणाम से शून्य ही है
ऐसा
है कि अगर जो विकल्प में दुख नहीं लगा तो वो हटने से हटने का प्रयत्न कैसे करेगा जिसको जहाँ सुख मिलता है वो वहाँ कैसे उठेगा वहाँ से हटेगा कैसे वहाँ से तो सम्यक दर्शन पहले भी दुख लगना चाहिए
जो विकल्प आत्मा के सम्मुख करने वाले आत्मा के सामने मतलब तो उसके पूर्व ही सम्मिश्रण होने वाला है वो इतने दुखरूप
है बिल्कुल है ही
ये विषय पर बॉम्बे में बहुत चर्चित हुआ
कौन सा
अनिल भाई के घर ये आपने देखा
श्रीमद जी के कुछ वचन उनके बहुत स्मृत में है। तो पर निश्चय राजचंद्र मन ने रहे हो गुरु अग्नाय था सुनते स्वरूप दोहराया पद कि वो 24 नंबर के पत्र में क्या कहता है। पर्याय पर्याय का करता है त्रिकाली अंश अथवा अखा द्रव्य नहीं। यह कर्ता कर्म की चरम सीमा है, अतः पर्याय में आखा एकाकार होना योग्य नहीं।
करता कारक कारक आ गया तो छह कारक आ गया,
एक कारक आता है तो छह आता है, एक उधर जावे एक उधर जावे सत्रह होता है।
सरकार का गया
कारक कार्य करने वाला जो कारक
क्या
अद्भुत
बात है, पर्याय में आखा एकाकार होना
युग नहीं, एक समय पर्याय में आखा एकाकार होता इस पत्र में आखिर का पैराग्राफ है, अधिक क्या लिखो, विकल्पों को तो धधकती हुई भट्टी के योगों का निमित्त है, वे इस मध्य ही रहना हो रहा है, जबकि चैतन्य मूर्ति विकल्पों को छूने वाली भी नहीं है। इस वक्त भी अधूरी दशा के विकल्पांशों में श्रद्धा में जमी हुई इस मूर्ति का एक रस आलिंगन कहा चैतन्य मूर्ति के एक रस में ओतप्रोत रहे, यही भावना है। फ्लो बहुत अच्छा है, पत्र में जो लिखते हैं फ्लो बहुत अच्छा है।
आपने बड़ी हेल्प की है, आपने बहुत हेल्प की
है। मैं इसको क्या है,
बहुत अच्छा बात है, अच्छा
रटन पुरुषार्थ ज्ञान आदि सब परिणाम है 39 को पत्र, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं, मेरी अपेक्षा से यह स्वयं होते हैं, मैं अविचल हूँ, इन परिणामों से विचलित नहीं होता है, इनसे पृथक व अधिक हूँ, अपेक्षा से मेरे गर्भ में होते हैं, देखिए, पर मैं इनमें एक में नहीं होता। दर्पण का त्रिकाली दल एक समय की दर्पणाकार पर्याय से भिन्न ही रहता है, दोनों कार्य एक समय में है।
वर्तमान ही परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में ही के उनतालीस नंबर पत्र है, सबसे लास्ट है, उनतालीस घट में है। वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ तो वर्तमान से ही किसी भी लाभ का नुकसान नहीं।
39 वर्तमान में परिणाम हूँ तो वर्तमान से किसी से भी लाभ और नुकसान नहीं है।
जिज्ञासा बुद्धि जिज्ञासु
ये तो ग्रहण करके बात होती है ना, ग्रहण किए बिना माना कैसे, मानने में तो ग्रहण होना चाहिए ना।
ग्रहण करने वाले को अधिकार इसका लिखने का, समझने वाले को भी अधिकार इसका समझने का।
उनको तो ये पता नहीं था कि ये ग्रंथारूढ़ हो जाएंगे, वो तो अपनी बात लिखते थे, वो तो स्वयं की अपनी बात लिखते थे, किसी को उपदेश देने के लिए पत्र तो नहीं लिखे कभी, इसलिए कुछ पत्र तो उन्होंने फाड़ डाले। उनको पता चला कि ये लोग सर्कुलेट करते हैं